समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और रोज की तरह ये सुबह बिलाई है एक नए उजाले के साथ, एक नई उम्मीद की किरण। हर उम्मीद में छुपा होता है जिंदगी में कुछ बेहतर करने का जज्बा। आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की इस गीत के साथ।
धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी जिंदगी, पंछ चले अंबर को अंबर को अंबर को, माझ चले सागर को सागर को सागर को, प्यार का नाम जीवन है।
जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश की ताजा तरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस एडिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और शगुन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
A very good morning to you, Siddharth, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani Network. We bring you our very exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 29th of May. So let's begin with the headlines first.
जी हाँ, नजर डालते हैं तक के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में पहली जून को सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी।
In Bihar, several senior leaders and star campaigners of NDA and Grand Alliance will take whirlwind tour today for campaigning in poll-bound areas of 7th and final phase of Lok Sabha elections. Senior BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh will hold 3 election rallies in Ara, Buxar and Patna Sahib Lok Sabha constituencies. BJP State President and Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary will also address public meetings in Jehanabad, Karakat, Nalanda, Sasaram and Patliput Lok Sabha constituencies. RJD Chief Lalu Prasad will campaign in different parts of Patliputra parliamentary constituency in support of her daughter and the RJD candidate. RJD leader Tejaswi Prasad Yadav will hold public meetings in Sasaram, Karakat, Buxar and Patliputra parliamentary constituencies.
और इसी के साथ इस समय गर्मी अपने पुरजोर पर है और देश के कई हिस्से इसकी चपेट में हैं। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। राजस्थान के चुरू में कल अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में कल 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
In Odisha, high-voltage campaigning for 7th and last phase of Lok Sabha elections continued in 6 parliamentary constituencies, Mayurbhanj, Balasore, Bhadrak, Jajpur, Kendrapara and Jagat Singhpur, and 42 assembly seats. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi is set to address 3 election rallies in the state today. Mr. Modi is scheduled to address his first public meeting at Baripada under Mayurbhanj parliamentary constituency, followed by a public meeting at Remuna under Balasore parliamentary constituency. His last public meeting will be held at Barua in Kendrapara Lok Sabha constituency. Congress President Mallikarjun Kharge is also scheduled to campaign today in Odisha. In Uttar Pradesh, only 2 days are left for the campaigning for the last and final phase of Lok Sabha elections. Union Home Minister and senior BJP leader Amit Shah will address 4 rallies in Uttar Pradesh. Today, he will be in Maharajganj, Deoria, Balia Sonbhadra and Ghazipur. In Ghazipur, he will hold a road show in favour of party candidate. Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath will campaign in Kushinagar, Deoria and Gorakhpur. On the other hand, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav will campaign for party candidate in Dudhi Assembly constituency, where by-polls will be held in the final phase of elections. He will later address rallies in Robertsganj and Mirzapur Lok Sabha constituencies also.
भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार शांति दूत के रूप में सेवा करते हुए उनकी महिलाओं और बालिकाओं के हितों की रक्षा करने की पुष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस ने बधाई देते हुए उन्हें एक आदर्श बताया। श्री गुटरेस बृहस्पतिवार को सेन को पुरस्कार प्रदान करेंगे। मेजर सुमन गंवाने के बाद ये सम्मान पाने वाली मेजर सेन दूसरी भारतीय शांति दूत हैं।
Election Commission has released the absolute number of voters who voted in the sixth phase of Lok Sabha polls, which was held on Saturday. In a statement, the Commission said 7,5,44,933 people voted in the sixth phase. A voter turnout of 63.37% has been recorded in 58 parliamentary constituencies which went for voting. The poll body said the final turnout will only be available post-counting, with counting of postal ballots and its addition to the total vote count. The commission also released parliamentary constituencies-wise number of electors for the seventh phase. Former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has admitted that Islamabad violated an agreement with India in 1999. His revelation came to light at a Pakistan Muslim League PMLN General Council meeting yesterday. During the meeting, Sharif said the then Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee visited Lahore and signed the Lahore Declaration on February 21, 1999. The agreement aimed to promote peace and stability between India and Pakistan. However, shortly after the signing, Pakistani troops infiltrated the Kargil district in Jammu and Kashmir, leading to the Kargil War, Sharif said.
और अब नजर डालते हैं स्पोर्ट्स की खबरों पर। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत की पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में जबकि एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के लिए पहला दिन अच्छा नहीं रहा। पुरुष सिंगल्स मुकाबले में प्रियांशु राजावत और महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स मुकाबले में भारत की शीर्ष जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी डेनमार्क की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा।
Indian mountaineer Satyadeep Gupta has scripted history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season. He also set another record by being the first Indian to traverse from Mount Everest to Mount Lhotse in 11 hours and 15 minutes. According to the organizers, Gupta conquered the 8,516-meter-high Mount Lhotse on Monday at noon, followed by a triumphant ascent of the towering 8,849-meter-high Mount Everest at 12:45 a.m. midnight. This historic achievement marks the first double dual ascent of the world's highest and the fourth highest peaks in a single season. He was accompanied by climbing guides Pesemba Sherpa and Nima Undi Sherpa.
तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में न्यूज हेडलाइंस के बाद अब समय है मेट्रो न्यूज का। तो सबसे पहले चेन्नई की खबरें सुनते हैं शकुन से।
All right, so in Chennai, the Bureau of Indian Standards in coordination with Habitat for Humanity International organized a workshop for M-SAN manufacturers regarding BIS certification at Chennai on Tuesday. Speaking at the workshop, USP Yadav, Deputy Director General BIS, informed about the various requirements of IS 383 test. He also highlighted that Tamil Nadu government has launched M-SAN Policy 2023, which mandates M-SAN manufacturers to obtain BIS certification. G. Bhavani, Director and Head, emphasized that quality ecosystem should be enhanced in the country. Around 75 M-SAN manufacturers from various parts of Tamil Nadu attended the program. एंड नाउ व्हाट अबाउट दिल्ली सिद्धार्थ?
जी हाँ, नजर डालते हैं अब दिल्ली के समाचारों पर। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने सिंगल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध दरभंगा लेन में जागरूकता अभियान चलाया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से NDMC ने बताया कि अभियान में लोगों के साथ सिंगल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध और विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा नगर पालिका परिषद ने वेक्टर जनित बीमारियों पर भी जागरूकता प्रदान की। आधुनिक कला राष्ट्रीय गैलरी NGMA कला को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में 3 जून से 28 जून तक विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। NGMA ने बताया कि इन कार्यशालाओं में थिएटर कला, मिट्टी के बर्तन, क्ले मॉडलिंग, कठपुतली, प्रिंट मेकिंग, लघु पेंटिंग, कलमकारी और कोलाज मेकिंग शामिल हैं। तो इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो इन चीजों को सीखना चाहते हैं वो यहां पर आधुनिक कला राष्ट्रीय गैलरी में जा सकते हैं। और ये सभी कार्यशालाएं एकेडमी के परिसर में आयोजित होंगी जो 10 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए खुली हुई हैं। पंजीकरण का आखिरी दिन 31 मई यानी कल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अपने स्नातक CSES एडमिशन पोर्टल को शुरू कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा विश्वविद्यालय ने बताया कि UG एडमिशन पोर्टल कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSES की शुरुआत के साथ ही विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिलों का पहला चरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही DU ने अपने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL और NC वेब के लिए भी दाखिला नीति जारी कर दी है। सुपर न्यूमेररी कोटा के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी अब विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस और विभागों की प्रत्येक कक्षा में एक एक सीट आरक्षित होगी। और अगर हम जो लोग इस समय DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट खबर है, तो वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, बेंगलुरु की खबर जानते हैं शकुन से।
जी बिल्कुल। वर्ल्ड नो टोबैको डे वॉज ऑर्गेनाइज इन नीमहंस इन बेंगलुरु विद अ मैसेज टू शील्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। Speaking on one of the sessions organized on this occasion, the director of Department of Collegiate Education and State Government, Dr. Shobha, stressed on the role of peer pressure on children using tobacco. She said that children should be educated on the ill effects of tobacco on their health. She added that there should be zero tolerance on tobacco use in schools and colleges. In another panel discussion organized on this occasion, a deputy director in the health department in Karnataka, Dr. Rajni, highlighted awareness campaigns conducted in 3,000 schools in the state on the damage caused by tobacco on our health. The session today discussed the influence of advertisements on young minds on the use of tobacco products. It was felt that the Cigarettes and Other Tobacco Products Act, passed by the central government to regulate tobacco use, faces enforcement challenges. And now moving on to Mumbai, Siddharth, what is happening there?
मुंबई के समाचारों पर नजर डालें तो पहली खबर यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी विज्ञापनों को हटाने की बजाय सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता पर बल देते हुए शहर और औद्योगिक विकास प्राधिकरण सिडको को होर्डिंग्स के प्रबंधन के लिए एक उचित नीति बनाने का निर्देश दिया है। ये मामला विज्ञापन एजेंसियों देवांगी आउटडोर एडवर्टाइजिंग और गार्गी ग्राफिक्स द्वारा अदालत के समक्ष लाया गया था, जिन्होंने नवी मुंबई हवाई अड्डे के प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र के भीतर पनवेल में होल्डिंग्स के लिए सिडको के 24 घंटे की हटाने की नोटिस को चुनौती दी थी। बढ़ती अगली खबर की ओर। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिवाजी राव नलवाड़े को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस बीच शिवसेना ने मुंबई स्नातक सीट से अनिल परब और मुंबई शिक्षक सीट से जेएम अभ्यंकर की उम्मीदवारी की घोषणा की है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिजीत पानसे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 जून है। और अब हैदराबाद से आपके पास क्या समाचार है?
Yes, Siddharth. So, in Telangana, an interstate child selling racket has been busted with the arrest of 11 persons. They used to sell the infants in Telangana and Andhra Pradesh for a price ranging between 1.8 lakh rupees and 5.5 lakh rupees. The police informed that as many as 13 babies have been rescued. The Rachakunda police acted based on information that a racket was being run wherein infants brought in from different parts, including Delhi and Pune, were being sold in Telangana and in the neighbouring Andhra Pradesh to childless couples. Pachakonda Police Commissioner Tarun Joshi informed that their teams arrested three persons on May 22nd on a specific input, and based on their confession, eight others were apprehended. He said during his investigation, it was revealed the culprits got the babies from three people in Delhi and Pune, and they are now absconding. The arrested persons, who acted like agents and sub-agents, have said that nearly 50 babies were supplied to them by the absconding accused. And now, Siddharth, let's move on to Kolkata.
जी हाँ, नजर डालते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के समाचारों पर. पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार अपने पूरे जोरों पर चल रहा है. वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोकनगर और बारुईपुर में दो सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया और कल कोलकाता में श्याम बाजार फाइव प्वाइंट क्रॉसिंग से स्वामी विवेकानंद के निवास तक एक मेगा रोड शो में वो शामिल हुए. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भी कोलकाता के बिराती में एक मेगा रोड शो में शामिल हुए. सीपीआईएम ने कल पार्टी के जाधवपुर और कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्रों के समर्थन में कोलकाता में सार्वजनिक जो सभाएं हैं उसे भी किया. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. और श्रोताओं, अब हम लेते हैं मौसम का हाल और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, जहां पे मौसम का हाल नहीं बल्कि मौसम बेहाल हो चुका है. क्योंकि जिस तरीके से कल दिल्ली में 49.9 यानी लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान है. इससे पहले आपको बता दें श्रोताओं कि 15 मई 2022 को दिल्ली में 49.2 डिग्री पारा दर्ज किया गया था. हालांकि अगर हम देखें तो देश में चूरू हुए सबसे ज्यादा गर्म रहा 50.5 डिग्री सेल्सियस के साथ. लेकिन ऐसे में दिल्ली ने भी इतनी ज्यादा गर्मी दिखाई है और आज भी अगर हम देखें तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, इससे भी ज्यादा तापमान होने का अनुमान है. तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत हमें अगर हम देखें तो ये है कि हमको इस समय अपने आप को काफी हाइड्रेटेड रखना होगा. पानी की शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए और हमें जितनी भी प्रिकॉशंस हैं गर्मी को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमें धूप में निकलना चाहिए. क्योंकि ये जो तापमान है, इतना जो टेम्परेचर है, ये कोई सामान्य टेम्परेचर नहीं है. क्योंकि ऐसे में कई बार हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है शगुन, और हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी है. तो वो लोग एक ऐसा टाइम जब हमें बहुत सारे लोग मेट्रो में या ट्रावल, अपनी कार में सुन रहे हैं, बाइक पे सुन रहे हैं, कहीं भी आते जाते, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आज भी तापमान कुछ इसी तरह का रहने वाला है. तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा.
And I think we should increase the intake of fluids nowadays, and there are many, you know, water and water-based, like we should increase the intake of fruit juices, etc. I mean, overall intake of fluids should be there.
बिल्कुल, तो शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी ना होने दें, कुछ कुछ समय पर पानी पीते रहें. और अब चलते हैं मुंबई, जहां पे आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है. न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. और शगुन, देश की बाकी महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है?
ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चेन्नई. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस. एंड बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद अ फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन और थंडर शावर्स. The minimum temperature will be 22 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees Celsius. Now moving on to Hyderabad. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
और कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त हो चला है उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन से जुड़ी हुई है. क्योंकि 29 मई का दिन कई कारणों से खास है और तारीख 29 मई 1953 की अगर हम बात करें तो दिन का 11:30 एक वो समय था जब न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ठीक इसी पल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे.
घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला.
रूठी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
जी हाँ, ये जो मैदान है फतेह करने की बात, यह आसान नहीं था। पूरी दुनिया इस पल को ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर याद करती है। आज इस उपलब्धि को हुए, अगर हम कह सकते हैं, 67 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये अभियान ब्रिटेन की ओर से था और पूरी दुनिया को ये खबर 4 दिन बाद 2 जून को मिली। और क्योंकि पहले उस समय हमारा जो, अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरीके का था, तो सोचिए आप, वहां पर आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इस दुनिया को इसकी खबर 4 दिन के बाद यानी 2 जून को मिली कि हमने एवरेस्ट को फतेह कर दिया है। 29,032 फीट ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा वहां का जो मौसम है बेहद सर्द है, सीधी चढ़ाई है, बर्फीले तूफान है, तो इन सब की वजह से इसके पहले किसी को भी ये सफलता हासिल नहीं हुई थी। और अभी तुमने न्यूज में भी, अभी हमने श्रोताओं को बताया कि सत्यदीप गुप्ता की हमने बात की, जो एक ही सीजन में एक बार नहीं बल्कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। तो शायद इसीलिए जो बैकग्राउंड में सॉन्ग बज रहा है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की क्षमता है, तो आप कुछ भी जीवन में कर सकते हो। और सुबह सुबह का समय है, लोग अपनी दिनचर्या को शुरू कर रहे हैं, तो आज आपने जो भी प्लान किया है ना, तो आप भी उस एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, अपने जो आपने आज का जो टारगेट लिया है उसे पूरा कर सकते हैं। और अब कुछ और इवेंट्स पर भी नजर डालते हैं।
सो टुडे इन 1933 महात्मा गांधी एंड्स हिज 21 डे फास्ट, हिज सेकंड फॉर द कॉज ऑफ द अनटचेबल्स।
और 1841 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड को ब्रिटिश उपनिवेश घोषित कर दिया गया था।
इन 1947 वी सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन।
और 1922 में आज ही के दिन इक्वाडोर को आजादी मिली थी।
In 1968, Dara Singh becomes the world wrestling champion.
और 1970 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था।
In 1982, Naval Academy was set up at Azimela, Kerala. It was approved basically at Azimela, Kerala.
और 1999 में डिस्कवरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ा, वो ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था।
And in 1992, Agni, India's IRB missile successfully, it was test-fired from Orissa coast for the first time since May 22, 1989.
बिल्कुल। और अब कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त हो चला है उन शख्सियत पर नजर डालने का जो आज के दिन से जुड़े हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मतिथि है। तो सबसे पहले आज हम याद कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर को, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा और जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से सभी के दिलों को जीता। और अगर देखें तो दुनिया में लगभग 4 दशक तक अपनी कड़क आवाज, रूपदार भाव भंगिमाओं के द्वारा उन्होंने अपने जो दर्शक थे उन्हें बहुत इम्प्रेस किया। पृथ्वीराज कपूर को पहला लीड रोल मिला साल 1929 में आई फिल्म सिनेमा गर्ल में। इसके 2 साल बाद फिल्म आई आलमारा, और इसी के साथ जो बोलती फिल्म की हम बात करते हैं, पृथ्वीराज भी इस फिल्म का हिस्सा थे। और अगर हम देखें तो उन्हें ज्यादातर थिएटर में उनको काम करने में दिलचस्पी थी, इसलिए फिल्मों के साथ साथ कई थिएटर से भी जुड़े रहे। 1944 में खुद का थिएटर उन्होंने शुरू किया था, जिसका नाम था पृथ्वी थिएटर। कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शकुंतलम इस थिएटर के स्टेज पर प्रदर्शित होने वाला पहला नाटक था। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में नौजवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी पृथ्वी थिएटर ने कई नाटकों का मंचन किया। तो हर नाटक के मंचन के बाद पृथ्वीराज कपूर थिएटर के बाहर वो खड़े हो जाते थे, और जो भी लोग वहां से, जो भी कलेक्शन होता था उससे इस थिएटर का खर्चा चलता था। उनकी जो आवाज है वो सबसे अलग है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मुगले आजम का ये डायलॉग।
ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहिक।
सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
दरोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में रख कर दो।
So, Prithviraj Kapoor, he is also considered to be one of the founding figures of Hindi cinema. And Siddharth, he was also associated with IPTA as one of its founding members. So, he has a lot of contribution that he has made.
Bilkul.
And his performance in Vidyapati, which was in 1937, was released in 1937. It was much appreciated. His best known performance is perhaps Alexander the Great in Sohrab Modi's Sikandar, which was released in 1941. He also joined the Grand Anderson Theatre Company, which is an English theatrical company that remained in Bombay for a year. He was closely, very, very closely associated with theatre. Through all these years, he remained devoted to the theatre and performed on stage regularly. He developed a reputation as a very fine and versatile actor on both stage and screen. So very, very...
जी बिल्कुल. पृथ्वीराज कपूर को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के से नवाजा गया. इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था. और श्रोताओं, आज ही जयंती है हीराबाई बरोदेकर की, जो किराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थीं. साल 1947 में हीराबाई ने अपने जीवन की सबसे खास प्रस्तुति दी थी. जब 15 अगस्त के दिन देश आजाद हुआ तो उन्हें लाल किले पर खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने वंदे मातरम गाया था. हीराबाई बरोदेकर का जन्म 29 मई 1905 में महाराष्ट्र की मिरज में हुआ था. पिता उस्ताद अब्दुल करीम खां बड़ौदा राजघराने के शाही गायक थे और माता तारीबाई उस राजघराने की सदस्य थी. परिवार और अगर देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्टी के साथ उन्होंने एक सफर को शुरू किया, लेकिन आगे जाकर जिस तरीके से उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना वर्चस्व काम जो अपना परचम लहराया वो आज भी कायम है.
So today we are also celebrating the birthday of Pankaj Kapoor, who was born on this day in the year 1954. He has worked in Hindi theatre, television and films. He has appeared in several television serials and films, as most of our listeners would be knowing. He is the recipient of several awards, including a Filmfare Award and 3 National Film Awards. His most acclaimed film roles to date have been that of Inspector P.K. in Raak in 1989, Dr. Dipankar Roy in Ek Doctor Ki Maut in 1991, and Abbaji in Vishal Bhardwaj's adaptation of Macbeth, Maqbool, in 2004. He is widely considered as one of the best actors in world cinema. His first National Film Award came with the 1989 film Raak, which also starred Aamir Khan. In the 1980s, he became a household name through the TV series Karam Chand, a comedy television series in the detective genre. And I hope and I think that most of the people would have heard this and would have watched this. He also starred in Office Office, a very famous comic satire. So let's listen to the opening theme of Office Office.
टेलीफोन का बिल आया है.
टेलीफोन जो लगवाया है.
और श्रोताओं, आज ही जयंती है देश के सुप्रसिद्ध कवि, भारत के प्रसिद्ध व्यंग कवि हुल्लड़ मुरादाबादी की. एक व्यंगकार के रूप में उन्होंने बहुत ही ख्याति पाई और इतनी ऊंची मत उड़ो क्या करोगी चांदनी ये अंदर की बात है जैसी हास्य कविताओं से भरपूर पुस्तकें लिखने वाले हुल्लड़ मुरादाबादी को आज हम याद कर रहे हैं. इसके अलावा आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा अपनी कलम के जादू से. सभी के दिलों को छू लेने वाले गीतों को लिखने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार योगेश गौड़ को, जिन्हें हम प्यार से योगेश के नाम से जानते हैं, उन्हें विशेष रूप से फिल्म आनंद के गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए जिंदगी कैसी, न जाने ऐसे कितने उन्होंने गीत लिखे जो आज भी हमारे दिलों के बेहद बेहद करीब है.
सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गमते, तेरी आंखों के साए चुराए
रसीली यादों ने उमन तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने।
और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां हमें ये इशारा कर रही हैं कि आपसे विदा ली जाए। आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी कोट।
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन विच इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।